శుద్ధాత్మనే నమః. నమో అరిహంతాణం, నమో సిద్ధాణం, నమో ఆయర్యాణం, నమో వజ్రాయాణం, నమో లోయే సవసాహూణం, లోయాలోయ పయాసం, గోదమథేరం పుణోజిణం వీరం, నమ్యూణఖేత్తసుత్తం జహోవే సంపయాసేమో. యా శ్రీ ధౌలా టీకా హే జో శ్రీ వీరసేన ఆచార్య రచిత హే, షట్ఖండాగమ గ్రంథ్ కి యే టీకా హే, జిస్కి రచనా పుష్పదంత ఔర్ భూతబలి ఆచార్యోనే కీ తీ ఔర్ జిన్హోనే శ్రీ ధర్సేన ఆచార్య కే ఉపదేశ్ కే అనుసార్ ఇస్కి రచనా కీ తీ ఔర్ యే ఉపదేశ్ హమే మహావీర్ భగవాన్ కే ద్వారా ప్రాప్త హువా హే. చౌథీ పుస్తక జో క్షేత్రానుగమ్ ఖేత్తానుగమ్ ఉస్మే అభి హమ్ పృష్ఠ సంఖ్య 6 పర్ ఆ గయే హే. నిక్షేపం కి బాత్ చల్ రహీ హే, యహాన్ క్షేత్ర సంబంధీ వివేచన పూర్ణ వ్యాఖ్యాన్ చలేగా, తో ఉస్మే క్షేత్ర మే హమ్ యమ్ ఉస్కా నామ్ బతా దియా, నిర్దేశ్ కియా, ఫిర్ ఉస్కే నిక్షేప్ బతాయేంగే. తో నిక్షేపో మే హమ్నే 4 ప్రకార్ కే నిక్షేప్ దేఖే థే, యాద్ హై కౌన్ సే? ద్రవ్య క్షేత్ర కాల్ భావ్ నహీ, నామ్ స్థాపనా ద్రవ్య ఔర్ భావ్, యానీ నామ్ నిక్షేప్, స్థాపనా నిక్షేప్, ద్రవ్య నిక్షేప్ ఔర్ భావ్ నిక్షేప్. యానీ క్షేత్ర కో హమ్ నామ్ క్షేత్ర, స్థాపనా క్షేత్ర, ద్రవ్య క్షేత్ర ఔర్ భావ్ క్షేత్ర ఇస్ తరహ సే కహ రహే హై. తో ద్రవ్య క్షేత్ర కి బాత్ హమారి కల్ హో రహీ థీ, ఆగమ్ ఔర్ నో ఆగమ్, ఆగమ్ ద్రవ్య క్షేత్ర ఔర్ నో ఆగమ్ ద్రవ్య క్షేత్ర. ఆగమ్ ద్రవ్య క్షేత్ర మే క్షేత్ర సంబంధీ జో ప్రావృత హై ఉస్కా జ్ఞాతా జీవ్ పరంతు వర్తమాన మే ఉపయోగ్ సే రహిత్, యానీ ఉస్మే ఉపయోగ్ నహీ హై. క్షేత్ర సంబంధీ శాస్త్ర మే ఆగమ్ మే ఉస్కా ఉపయోగ్ నహీ హై, ఉస్కో కహతే హై ఆగమ్ ద్రవ్య క్షేత్ర. నో ఆగమ్ ద్రవ్య క్షేత్ర మే తీన్ లేనా, గాయక్ శరీర, భావీ, భావీ భీ కహతే భవ్య భీ కహతే, గాయక్ శరీర నో ఆగమ్ ద్రవ్య క్షేత్ర, భావీ నో ఆగమ్ ద్రవ్య క్షేత్ర, ఔర్ తద్ వ్యతిరిక్ నో ఆగమ్ ద్రవ్య క్షేత్ర. గాయక్ శరీర నో ఆగమ్ ద్రవ్య క్షేత్ర మే శరీర్ కి బాత్ హై, జాననే వాలే జీవ్ కే శరీర్ కి బాత్ హై. వర్తమాన్ మే జాననే వాలా జీవ్ హై ఉస్కా ఇస్ భవ్ కా శరీర్ ఉస్కో వర్తమాన్ గాయక్ శరీర నో ఆగమ్ ద్రవ్య క్షేత్ర కహేంగే. ఉసీ జీవ్ కా భూతకాల మే పూర్వ భవ్ కా జో శరీర్ హై ఉస్కో భీ భూత్ గాయక్ శరీర్ నో ఆగమ్ ద్రవ్య క్షేత్ర కహేంగే. ఔర్ ఇస్ జీవ్ కా అగలే భవ్ కా జో శరీర్ హై ఉస్కో భీ భావీ గాయక్ శరీర్ నో ఆగమ్ ద్రవ్య క్షేత్ర కహేంగే. యే గాయక్ శరీర్ కి బాత్ హుయీ, ఉస్మే భీ భూతకాలీన శరీర్ మే భీ చుత్త వో కైసే పూర్వ భవ్ మే మరా హై, తో చుత్త చావిత త్యక్త, ఫిర్ త్యక్త కిస్ ప్రకార్ సే కియా ఉస్నే, భక్త ప్రత్యాఖ్యాన్ ఇంగిని మరణ ప్రయోగ ఉపగమ్, ఐసే ఉస్మే భేద కియే థే హమ్నే. అబ్ భావీ వాలా జో భేద హై ఉస్మే జీవ్ కో లేనా హై. గాయక్ శరీర్ మే జాననే వాలే జీవ్ కే శరీర్ కో లియా థా. అబ్ భావీ వాలా జో భావీ నో ఆగమ్ వాలా భేద హై జో ఉస్మే జీవ్ కో లేనా హై, జో వర్తమాన్ మే తో నహీ జాన్ రహా హై పరంతు జో భవిష్య మే జాకర్ జాననే వాలా హై ఉస్ జీవ్ కో యహాన్ నో ఆగమ్ ద్రవ్య క్షేత్ర కహా. ఔర్ తద్ వ్యతిరిక్త మే ఫిర్ వో కర్మ ఆది అన్య కో లేనా హై ఉస్కి బాత్ హమారీ చల్ రహీ థీ. యహాన్ 6 పృష్ఠ పర్ ఏక్ శంకా సమాధాన్ హో జానే కే బాద్ వహాన్ సే అభి హమ్ పఢేంగే. నో ఆగమ్ ద్రవ్య క్షేత్ర కే తీన్ భేదో మే సే కౌన్ సే తీన్ భేద హమ్నే దేఖే థే? గాయక్ శరీర నో ఆగమ్ ద్రవ్య క్షేత్ర, భావీ నో ఆగమ్ ద్రవ్య క్షేత్ర, ఔర్ తద్ వ్యతిరిక్త నో ఆగమ్ ద్రవ్య క్షేత్ర. ఇన్ తీన్ భేదో మే సే జో ఆగామీ కాల్ మే క్షేత్ర విషయక్ శాస్త్ర కో జానేగా, ఐసే జీవ్ కో, జీవ్ కి బాత్ హై యహాన్, గాయక్ శరీర్ మే శరీర్ కో కహా థా, అబ్ యహాన్ జాననే వాలే జీవ్ కే శరీర్ కో కహా థా. యహాన్ నహీ జాననే వాలా జీవ్ హై పరంతు వో కైసా జీవ్ హై భవిష్య మే జాననే వాలా హై, ఐసే జీవ్ కో భావీ నో ఆగమ్ ద్రవ్య క్షేత్ర కహతే హై. ద్రవ్య నిక్షేప్ మే తో भूतकालीन भविष्यकालीन पर्याय से वाला वो द्रव्य को द्रव्य की मुख्यता से है ना, वहाँ द्रव्यार्थिक नय से हम कहते हैं, इसलिए वो जीव आगे चलकर जानने वाला है, जीव तो वही है, इसलिए उसको द्रव्य निक्षेप में ले लिया। अब शंका, जो जीव क्षेत्रागम रूप यानी क्षेत्र का जो आगम है ना, क्षेत्र संबंधी आगम या क्षेत्र संबंधी ज्ञान, आगम का ज्ञाता, तो क्षेत्रागम रूप क्षोभशम से रहित होने के कारण अनागम है, उसको अनागम कहा, अनागम, आगम का ज्ञाता नहीं है इसलिए उसको अनागम कहा, यानी वो अभी उस संबंधी उसका क्षोभशम नहीं है। उस जीव के क्षेत्र संज्ञा कैसे बन सकती है, तो उसको आप नो आगम द्रव्य क्षेत्र कैसे कह सकते हो, ऐसा प्रश्न है। उसका समाधान नहीं, क्योंकि भाव क्षेत्र रूप आगम जिसमें निवास करेगा, जीव को हमने आधार कल ही बताया था, जीव के आधार से आगम संबंधी ज्ञान है, तो आधार है भाव आगम यानी आगम संबंधी ज्ञान, तो आगम संबंधी ज्ञान इस जीव के आधार से निवास करेगा भविष्यकाल में। जैसे अभी तो चावल है, हम धो रहे हैं, तो किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, तो भात पका रहे, तो सीने की क्रिया तो अभी आगे चलकर होगी, या अभी हम शिखर जी के लिए हम घर अभी ताला लगा रहे, अभी स्टेशन पर भी नहीं पहुंचे, बम्बई में ही है, तो भी आप कहाँ जा रहे हैं, हम शिखर जी जा रहे हैं, या घर के अन्य सदस्य कहेंगे ये भाई कहाँ गए, शिखर जी गए, उसका उपचार वर्तमान में ही होता है। वैसा यहाँ भाव आगम रूप जो भाव क्षेत्र रूप आगम है वो जिसमें निवास करेगा, जिस जीव में निवास करेगा, यानी जो जीव आगे चलकर उस पर्याय रूप से परिणत होगा। कोई अभी युवराज है उसको हम राजा कह देते हैं, क्योंकि आगे चलकर वो राजा बनने वाला है, वैसे ये जीव आगे चलकर जानने वाला है, इसलिए इसको द्रव्य क्षेत्र कहा, नो आगम द्रव्य क्षेत्र। इस प्रकार की निरुक्ति के बल से जीव द्रव्य के क्षेत्रागम रूप क्षोभशम होने के पूर्व ही क्षेत्रपना सिद्ध है। मुझे याद है 12वीं पास की हमने इंटर कॉलेज प्री प्रोफेशनल कहते तब, और मेडिकल में अभी एडमिशन लेने गए तभी से मुझे डॉक्टर कहते थे, हमारे घर के कोई जो कोई घर में काम करने वाले थे नौकर वगैरह, डॉक्टर। अभी तो मेडिकल की अभी शुरू भी नहीं हुआ कॉलेज, तभी से कहना शुरू कर देते हैं। वैसे अभी भविष्य में ये जानने वाला जीव है तो अभी से उसको द्रव्य क्षेत्र कहेंगे, नो आगम द्रव्य क्षेत्र। अब आगे कहते हैं तद व्यतिरिक्त वाला भेद अब कहेंगे, ज्ञायक शरीर और भावी से भिन्न, तीन भेद देखे थे ना, एक है ज्ञायक शरीर, एक है भावी, और तीसरा है तद व्यतिरिक्त। ये तद व्यतिरिक्त नाम का जो भेद है, तद व्यतिरिक्त यानी इनके अलावा, व्यतिरिक्त यानी अलावा, जो ज्ञायक शरीर भी नहीं है और जो भावी वही जीव भी नहीं है, इन जीव और शरीर इनके अलावा और जो कुछ है वो तद व्यतिरिक्त में आता है, तो तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य क्षेत्र है, वह कर्म द्रव्य क्षेत्र और नो कर्म द्रव्य क्षेत्र के भेद से दो प्रकार का है। ये तद व्यतिरिक्त में दो प्रकार, कर्म तद व्यतिरिक्त और नो कर्म तद व्यतिरिक्त, उसके आगे लंबा चौड़ा बता देना, नो कर्म, ये कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य क्षेत्र, पूरा नाम उसका, नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य क्षेत्र। तो यहाँ खाली उन्होंने कर्म द्रव्य क्षेत्र बता दिया शॉर्ट में, या नो कर्म द्रव्य क्षेत्र के भेद से दो प्रकार का है, उसमें से ज्ञानावरणादि आठ प्रकार के कर्म द्रव्य को कर्म द्रव्य क्षेत्र कहते हैं, यानी आठ कर्मों को यहाँ कर्म द्रव्य क्षेत्र कहा है। शंकाकार पूछ रहा है, कर्म द्रव्य को क्षेत्र संज्ञा कैसे प्राप्त होती है, हमने शरीर में रहने वाले जीव के कारण शरीर को तो आगम द्रव्य क्षेत्र कहा है, नो आगम द्रव्य क्षेत्र कहा, परंतु यहाँ कर्म को भी क्यों कह रहे हैं, प्रश्न ख्याल में आए, जैसे शरीर को कहा वैसे यहाँ कर्म को भी कह रहे हैं, तो उसे क्यों कहते हैं, तो उसका समाधान, क्योंकि जिसमें जीव क्षयंती अर्थात निवास करते हैं, इस प्रकार की निरुक्ति के बल से कर्मों के क्षेत्रपना सिद्ध है। जीव में वो कर्म भी है ना, जीव के साथ जैसे शरीर है, शरीर में जीव रहता है ऐसा कहा था, वैसे कर्मों में भी जीव रहा है, कर्म शरीर भी है वहाँ, तो उस शरीर में ये जीव रह रहा है, इसलिए कर्मों के साथ इसका निवास है, इसलिए कर्मों को भी क्षेत्र कहा। जैसे शरीर को नो आगम द्रव्य क्षेत्र कहा, वैसे कर्म को भी नो आगम द्रव्य क्षेत्र कहा। तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य का दूसरा भेद जो नो कर्म द्रव्य क्षेत्र है, जो कर्म नहीं है, नो कर्म की बात है, वह औपचारिक और पारमार्थिक के भेद से दो प्रकार का है, एक उपचार से कहेंगे और एक खरेखर जो है। उनमें से लोक में प्रसिद्ध शालिक क्षेत्र, ब्रीही क्षेत्र, ब्रीह ने कोई धान्य इत्यादि औपचारिक नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि शाली यानी कोई तंदुल, तो विशिष्ट क्षेत्र में वो धान उपजता है तो उसका क्षेत्र कहने आता है उसको। यह औपचारिक नौकर्म तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य क्षेत्र हुआ, और आकाश द्रव्य पारमार्थिक नौकर्म तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य क्षेत्र है। आकाश द्रव्य को यहाँ कहा तद व्यतिरिक्त, ये पारमार्थिक तद व्यतिरिक्त नौ आगम द्रव्य क्षेत्र। नोआगम द्रव्य क्षेत्र कहा, जैसे जीव वहाँ रहता है उस अपेक्षा से शरीर को कहा था, जीव की बात है, जिसमें जीव क्षयंती यानी निवास करता है। राइट साइड में देखो, 7 नंबर पर कर्म को क्यों कहा द्रव्य क्षेत्र, क्योंकि वो जानने वाला जीव उसमें निवास कर रहा है, जैसे उसे औदारिक शरीर को कहा या वैकरिक शरीर को कहा, वैसे उसके कर्म शरीर को भी कहेंगे तद व्यतिरिक्त वाला। परंतु तद व्यतिरिक्त शरीर के अलावा भी अन्य कोई चीजें हैं, तो कौन है, तो आकाश द्रव्य है, पूरे ही सबको क्षेत्र जो है ना, आकाश द्रव्य क्षेत्र है ना, वो क्षेत्र बताता है, हाँ उसमें जीव रहता है, कहा भी है। अब यहाँ गाथा ऊपर दो गाथाएं हैं, उसको हम दोनों को पढ़ेंगे, फिर दोनों का अर्थ देखेंगे। खेतम खलु आकाशम तौवदिरित्तम चहो दिनो खेतम जीवाय पोगलाविय धम्मा धम्मत्या कालो गासम सपदेशम तु उड्ढाधो तिरियो विय खेतलोगम वियाणाहि अनंत जिन देशिदम। देखो, आकाश द्रव्य नियम से तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य क्षेत्र है, वो क्यों है वो अभी हमने देखा था, और आकाश द्रव्य के अतिरिक्त जीव पुद्गल धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय तथा काल द्रव्य नो क्षेत्र कहलाते हैं, उनको नो आगम द्रव्य क्षेत्र कहा आकाश द्रव्य को, और इनको नो क्षेत्र कहा उनमें रहने वाले जो है जीव को भी लिया उसके अन्य जीव भी हो गए। हाँ, आकाश स्वप्रदेशी है, अभी आकाश का वर्णन करते हैं। आकाश स्वप्रदेशी है, अनेक प्रदेशी है ना, स्वप्रदेशी है, और वह ऊपर नीचे और तिरछे सर्वत्र व्याप्त है, उसे ही क्षेत्र लोग जानना चाहिए, उसे जिन भगवान ने अनंत कहा है, या आकाश को क्षेत्र कहा है और उसे अनंत कहा, खेतलोगम। यह आगम और नो आगम के भेद रूप द्रव्य क्षेत्र निक्षेप भी द्रव्यार्थिक ने का विषय है, क्योंकि द्रव्य अर्थात सामान्य के बिना यह निक्षेप संभव नहीं है। द्रव्य में यह निक्षेप होता है, इसलिए सामान्य के बिना यह नहीं होता, इसलिए यह भी द्रव्यार्थिक नय का विषय। हमारा बात क्या हमारी चल रही थी, चार निक्षेप हमने देखे थे, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। उसमें से नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप और द्रव्य निक्षेप, ये द्रव्यार्थिक नय के विषय है, और भाव निक्षेप को पर्यार्थिक नय का कहा। अब भाव क्षेत्र निक्षेप की बात करें, भाव में वर्तमान पर्याय उस रूप से परिणत जीव लेना, आगम का ज्ञाता और वर्तमान में उसमें उपयोग वाला, ऐसा यहां लेंगे। भाव क्षेत्र निक्षेप है वह आगम भाव क्षेत्र और नो आगम भाव क्षेत्र के भेद से दो प्रकार का है। क्षेत्र विषयक प्रावृत के ज्ञाता और वर्तमान काल में उसमें उपयुक्त जीव को, उपयुक्त है ना, उपयोग उसमें है उसको, अभी उसके आगम संबंध में उसका उपयोग चल रहा है, आगम भाव क्षेत्र निक्षेप कहते हैं। जो आगम से अर्थात क्षेत्र विषयक शास्त्र के बिना अन्य पदार्थ में उपयुक्त हो उस जीव को क्या कहते हैं, नो आगम कहा, यानी आगम का ज्ञाता नहीं है परंतु अन्य किसी विषय में वो उपयुक्त है, उपयोग उसका उसमें जुड़ा है। इसलिए भाव में तो लेना क्योंकि वर्तमान उपयोग किसी अन्य में है परंतु आगम में नहीं है, किसी अन्य में है, इसलिए उसको, उस जीव को नो आगम भाव क्षेत्र कहेंगे। आगम भाव क्षेत्र और नो आगम भाव क्षेत्र, जानने वाला वर्तमान उपयोग वाला जीव भाव क्षेत्र है, यानी आगम भाव क्षेत्र, और नो आगम में आगम को नहीं जानने वाला परंतु अन्य विषय को जानने वाला है, अन्य विषय में जिसका उपयोग चल रहा है ऐसा जीव, वो नो आगम भाव क्षेत्र कहेंगे। यानी बिना आगम के परंतु क्षेत्र संबंधी उसका उपयोग चल रहा है। अथवा अवदयिक आदि पांच प्रकार के भावों को नो आगम भाव क्षेत्र निक्षेप कहते हैं, उसके कुछ अन्य भाव चल रहे हैं। तो यहाँ अवदयिक आदि पांच प्रकार के भावों को भी, भाव है ना, ये भाव की बात चल रही है, इसलिए उन भावों को भी नो आगम भाव क्षेत्र निक्षेप कहते हैं। शंका कहते हैं, शंकाकार है वो, कह रहा है ऊपर बतलाए गए इन क्षेत्रों में से यहाँ पर कौन से क्षेत्र से प्रयोजन है। हमने नाम क्षेत्र देखा है, स्थापना क्षेत्र देखा, द्रव्य क्षेत्र और भाव क्षेत्र, उसके भी सभी डिटेल्स यानी भेद और प्रभेद देखे। उसमें से इस शास्त्र में कौन सा क्षेत्र अपेक्षित है या किस पर यहाँ चर्चा चलेगी, तो कहते हैं यहाँ पर नो आगम द्रव्य क्षेत्र से प्रयोजन है। नो आगम द्रव्य क्षेत्र में किसको लिया था हमने, आकाश द्रव्य को, मुख्यता तो उसी की है ना। तो नो आगम द्रव्य क्षेत्र किसे कहते हैं, क्योंकि अपना विषय चलेगा यहाँ से, तो आकाश, गगन, देव, पथ, अब ये समानार्थी शब्द है सभी, आकाश कहो या गगन कहो या देव पथ कहो या गुह्य का चरित कहो, यानी यक्षों के विचरण का स्थान, अवगाहन लक्षण कहो, आधेय, व्यापक, आधार और भूमि, ये सब नो आगम द्रव्य क्षेत्र के एकार्थक नाम है, विशेषार्थ। आधे है ना, अभी तो आकाश की बात चल रही ना, अन्य द्रव्यों का आधार है वो, इसलिए उसको आधार भी कहा, इसको आधे, अच्छा यहाँ आधे भी लिया उसको, स्वयं का आधार और आधे दोनों होगा वो, इसलिए उसको आधार देने के लिए और किसी अन्य की जरूरत नहीं है। विशेषार्थ, अब धवलाकार, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इन प्रसिद्ध छह अनियोग द्वारा उनसे क्रमशः क्षेत्र का विचार करते हैं। हमें किसी भी बात संबंधी जानना है, किसी भी पदार्थ संबंधी, किसी संख्या हो, क्षेत्र हो, कुछ काल हो, तो हमने पहले ही भाग में देखा था, धवला के पहले भाग में, कि पदार्थ संबंधी हमें छह प्रश्न पूछना चाहिए। तो पदार्थ क्या है, तो उसमें उसका निर्देश यानी नाम बतलाया जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछेंगे किसका है, तो उसमें स्वामित्व, अभी यहाँ जो छह नाम हमने देखा, दूसरा है स्वामित्व, यानी वो पदार्थ किसका है, साधन जिसको करण भी कहते हैं, तो किसके द्वारा वो होता है पदार्थ, फिर अधिकरण यानी वो कहाँ पर होता है, स्थिति के लिए कितने समय तक रहता है, और विधान में कितने प्रकार का है। इन छह प्रश्नों के उत्तर में किसी भी पदार्थ संबंधी पूर्ण जानकारी आती है, तो इसको कहते हैं छह अनुयोग। इन छह अनुयोग द्वारों के माध्यम से साधन यानी किसका, किसके द्वारा प्रश्न पूछ रहे। छह प्रश्न पूछे ना हमने, पदार्थ क्या है, हा? कितने प्रकार का है, यानी उसमें उसके भेद वगैरह बताएंगे। अभी निर्देश तो हो गया उनका, उन्होंने क्षेत्र भी बता दिया, उसके निक्षेप भी बता दिया, वो निक्षेप भी निर्देश में आ जाते हैं। तो यहाँ बता रहे, देखो ये जो छह अनुयोग द्वारों से क्रमशः क्षेत्र का विचार करते हैं। अब यह आगे उसका विचार होगा। इनमें से पूर्व में जो निक्षेप या एकार्थ द्वारा क्षेत्र का विचार किया गया है, यानी नाम बताया, जिसको निर्देश भी कहते हैं, नाम बताया, उसके निक्षेप बताए, एकार्थवाची शब्द बताए, ये सब निर्देश में आ जाता है। अभी बताया ना उन्हें आकाश गगन वगैरह सब एकार्थ, तो ये सब निर्देश के अंतर्गत समझना चाहिए। यानी पहला जो पॉइंट है निर्देश वाला, वो उन्होंने समझा दिया, क्योंकि सूत्र में ही हमने देखा था, पहला ही सूत्र क्या था, क्षेत्रानुगम के द्वारा दो प्रकार का निर्देश किया जाता है, एक ओघ निर्देश और एक आदेश निर्देश। देखो दो पृष्ठ पर, क्षेत्रानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। ओघ यानी सामान्य निर्देश और विशेष निर्देश, ये बात हमने देखी। तो ये यहां तक अभी तक तो निर्देश की बात हुई, अब ये स्वामित्व की बात अभी यहां चलेगी। शंका, क्षेत्र किसका है अर्थात इसका स्वामी कौन है, हमने देखा ना छह प्रश्न पूछे जाएंगे। ये दूसरा चल रहा है स्वामित्व वाला, कि क्षेत्र किसका है, तो उसका समाधान, यह भंग शून्य है अर्थात स्वामी कोई नहीं है, इसका कोई स्वामी नहीं है। आकाश का कौन स्वामी है, कोई ईश्वर होगा उसका स्वामी, कोई स्वामी नहीं है। फिर तीसरा अभी प्रश्न चलेगा, साधन बताएंगे, किससे क्षेत्र होता है अर्थात क्षेत्र का साधन या करण क्या है, साधन को ही करण कहते ना, उसका साधन क्या है, किससे वो बना है। समाधान, पारिणामिक भाव से क्षेत्र होता है, किसके पारिणामिक भाव से, जीव के या भगवान के, हाँ हाँ प्रत्येक द्रव्य का अपना पारिणामिक भाव है ना, तो क्षेत्र का अपना, बहुत अच्छा, अर्थात क्षेत्र की उत्पत्ति में कोई दूसरा निमित्त न होकर वह स्वभाव से है, पारिणामिक भाव यानी स्वभाव, उसका क्षेत्र का अपना स्वभाव है। अब अगला जो है अधिकरण वाला प्रश्न, कि किसमें क्षेत्र रहता है अर्थात इसका अधिकरण क्या है, उसका समाधान, अपने आप में ही यह रहता है अर्थात क्षेत्र का अधिकरण क्षेत्र ही है, क्षेत्र स्वयं में ही रहता है, वो किस में रहता है, अपने में रहता है, जैसे वो स्वयं अपना स्वामी है, हा? स्वयं अपने उत्पत्ति का दूसरा स्वभाव से ही उत्पन्न है, कोई दूसरा उत्पन्न करने वाला नहीं है, अधिकरण में भी स्वयं ही उसका, स्वयं का अधिकरण है। शंकाकार पूछ रहे हैं, एक ही आकाश में आधार आधेय भाव कैसे संभव है, स्वयं ही आधार और स्वयं ही उसका आधेय, क्योंकि सार में स्तंभ है, इस प्रकार एक वस्तु में भी आधार आधेय भाव देखा जाता है। ये सार में स्तंभ है, इसका अर्थ मुझे भी नहीं पता चला, हाँ सार और स्तंभ एक ही लगता है, ऐसा होगा ना, पाया भूत कौन है वो, तो ऐसा भी आधार पिलर है, ऐसा ही है ना, वही पिलर स्वयं अपना, इन्हें वो स्वयं आधार है, किसके आधार से, अपने आधार से, ऐसा है। एक वस्तु में भी आधार आधेय भाव देखा जाता है, प्रत्येक चीज स्वयं का आधार है ना, वो तो हम ऐसा भी देखते हैं ना, द्रव्यान युग में तो हम सीखे देंगे, ये क्या टेबल जमीन के आधार से है, ऐसा नहीं है, स्वयं अपने आधार से, प्रत्येक वस्तु स्वयं अपने आधार से। षटकारक में भी हम लगाते हैं अधिकरण वाला, वस्तु का अधिकरण उसमें स्वयं में है, छह कारक उसमें स्वयं में है, वैसे उसका आधार भी स्वयं है। ये सार का अर्थ मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए स्तार में स्तंभ स्तंभ ने खंबा, जैसे खंबे के आधार से इमारत है समझो, या रूप है, तो खंबा किसके आधार से, वो अपने आधार से, इस तरह से वो समझाना चाहते हैं। ये तो उदाहरण के तौर पर दृष्टांत है वो तो। अब पांचवा स्थिति वाला प्रकार, पांचवा जो प्रश्न है, कितने काल पर्यंत क्षेत्र रहता है, अर्थात क्षेत्र की स्थिति कितनी है, कितने काल तक रहेगा, अनादि अनंत। समाधान, क्षेत्र अनादि और अनंत है। शंका, अभी छठा पॉइंट जो विधान वाला है, क्षेत्र कितने प्रकार का है। समाधान उसका, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा क्षेत्र एक प्रकार का है, अथवा प्रयोजन के आश्रय से क्षेत्र दो प्रकार का है, यानी आकाश क्षेत्र जो हम कहते हैं वो एक ही है, परंतु हमने प्रयोजन के वश उसके दो भेद बताए, कौन से, लोकाकाश और अलोकाकाश। समझने के लिए या प्रयोजन कौन सा था हमारा, समझने का, समझाने का, ये इस प्रयोजन वश हमने उसके दो भेद बताए, उसके दो खंड है ही नहीं है, ऐसे अलग अलग कुछ है ही नहीं, एक ही अखंड है, परंतु उसमें हमने दो प्रकार बताए, लोकाकाश और अलोकाकाश, जिसमें जीवादि द्रव्य अवलोकन किए जाते हैं, पाए जाते हैं, उसे लोक कहते हैं। ये अवलोक, लोक्यते यानी अवलोकन होता है, पाए जाते हैं, दिखते हैं, उससे ये लोक शब्द तैयार हुआ है। जीवादि अन्य जो पांचों द्रव्य जिसमें दिखाई देते हैं उसको लोक कहते हैं। इसके विपरीत जहाँ जीवादि द्रव्य नहीं देखे जाते उसे अलोक कहते हैं। ये तो हमें मालूम है, ये सिद्धांत प्रवेशी का मूल बेस है। अथवा देश के भेद से क्षेत्र तीन प्रकार का है, उसके तीन भेद किए, यानी जो लोकाकाश है उसके तीन भेद किए, कौन से, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तो देश के भेद से क्षेत्र तीन प्रकार का है। मंदराचल की चुलिका से ऊपर का क्षेत्र ऊर्ध्वलोक है, यानी सुमेरु पर्वत जो लोकाकाश के बीचों बीच है, सेंटर में उसका बेस है वो सेंटर में, फिर मध्यलोक में वो पूरा ऐसा 100,000 योजन ऊंचाई का, और ऊपर उसकी 40 योजन की चुलिका है। तो चुलिका से ऊपर का क्षेत्र ऊर्ध्वलोक है, ऊपर के 7 राज्य। मंदराचल के मूल से नीचे का क्षेत्र अधोलोक है, मूल से लेकर नीचे का, और जितना मेरु है उतनी जो चौड़ाई है, हाँ, तो वो तिर्यक लोक, ऐसा आड़ा तो एक राज्य हो जाएगा। मंदराचल से परिच्छिन्न अर्थात तत्प्रमाण मध्यलोक है। चूली का ऊपर इंक्लूडेड, आपको ये जानना है तो नीचे देखो, नहीं वो नीचे है, देखो नीचे जो फुटनोट है, मेरु अयम त्रयाणाम लोकानाम मानदंड, ये जो मेरु है तीन लोक का मानदंड है। अस्य अधस्थलात अधोलोका, उसके अधस्थल से नीचे से अधोलोक है। चूलिका मूलात ऊर्ध्वम ऊर्ध्वलोका, चूलिका के मूल से जो ऊपर है, चूलिका ऊपर आ गई, 40 ऊपर गई, हाँ ऊर्ध्वलोक में गई, चूलिका मूलात ऊर्ध्वलोकम ऊर्ध्वम, चूली का मूलात ऊर्ध्वम, चूली का मूल से जो ऊपर का भाग है वो ऊर्ध्व लोक है। हाँ बोलो बोलो, क्यों हुआ? और मध्यम प्रमाण तिर्यक विस्तीर्ण तिर्यक लोका, मध्यम जो है उसके आड़ा फैला हुआ उसको तिर्यक लोक या मध्य लोक कहते हैं। ये तो तत्वार्थ राजवार्तिक में हुआ। अब आगे भी बताते हैं। यह च बहु समभूमि भागे रत्न प्रभा भागे मेरु मध्य अष्ट प्रदेश और रुचको भवती। ये जो मेरु के सेंटर में जो आठ प्रदेश है उसको रुचक कहा। तस्य उपरितन प्रस्तरस्य उपरिष्टौ नवयोजन शतानि। वो जो प्रस्तर है उसका फैलाव है, उसकी लेवल जो है उस लेवल के ऊपर, सेंटर जो हमने पकड़ा है उस लेवल से ऊपर नवयोजन शतानि 900 योजन। यावत् ज्योतिष चक्रस्य उपरितल तावत् तिर्यक लोका, यानी ज्योतिष चक्र जो है ज्योतिर्लोक उसका जो ऊपरी तल है, बीच वाले उसमें ज्योतिषियों के विमान है, उसका जो ऊपर लेवल है, ऊपर की लेवल वहां तक तिर्यक लोक, वहां तक तिर्यक लोक है। ततः परत ऊर्ध्व भाग स्थितत्वात् ऊर्ध्व लोको, और उसके ऊपर ऊर्ध्व लोक कहा है। ये अलग अलग अपेक्षा यहाँ बता रहे हैं। भवनवासी नहीं, ज्योतिषी, ज्योतिषी विमान, ज्योतिषी विमान मेरु की चक्कर काटते हैं, उसके ऊपर की लेवल 900 योजन वाली। मेरु पर्वत है ये समभूमि, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ज्योतिष विमान इतने लेवल में है, इसकी अपर लिमिट है 900 योजन। मेरु तो 1,00,000 योजन वाला है, तो ये 900 योजन, देखा 790 से लेकर ऐसा कुछ 110 योजन वाला है। हाँ 110 योजन वाला ये पट्टा है, परंतु अपने तो मध्यलोक की सीमा बता रहे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर नीचे भी थोड़ा बताएंगे। देखो आगे ऊर्ध्व भाग स्थितत्वात् ऊर्ध्व लोको देशो न सप्तरज्जु प्रमाणो। यदि सेंटर से ऊपर देखते हम तो 7 राजु है, परंतु ऊर्ध्व लोक में से 900 योजन बात करो तो थोड़ा कम 7 राजु ऊर्ध्व लोक है। रुचकस्य अधस्तन प्रस्तरस्य अधो नवयोजन शतानि यावत् तावत् तिर्यक लोका। नीचे भी उन्होंने 900 योजन तक तिर्यक लोक बताया है। ये अपेक्षा हमने पहले नहीं जानी थी, तो 1800 हो गया। हाँ ये पृथ्वी की जो ऊपर की लेवल है, तिर्यक लोक यहाँ से यहाँ तक लिया 900 योजन जमीन के ऊपर, और ये यहाँ जमीन के नीचे 900 योजन। हाँ 900 योजन लिए उसमें से। हाँ सातिरिक ततः परतः अधो भाग स्थितत्वात् अधोलोक सातिरेक सप्तरज्जु प्रमाणा। इसलिए वो अधोलोक है, वो सातिरेक थोड़ा ज्यादा 7 राजु प्रमाण है। उसमें से भी गए ना, ये उसमें भी गए ना नीचे वाला। अच्छा अधोलोक ऊर्ध्वलोक यो मध्य अष्टादश योजन शत प्रमाण तिर्यक भाग स्थितत्वात् तिर्यक लोक। अधोलोक और ऊर्ध्वलोक में 1800 योजन वाला मध्य लोक है, ऐसा दो अलग अलग अभी हमने पढ़े, ये बात आएगी आगे। चलो ये दूसरा मत, पहले तो हमने देखा था ना, वो तो मेरु समान 1,00,000 योजन वाला उतना ही मध्य लोक बताया था उन्होंने, मेरु की। हाँ उतना एक लाख योजन वाले इस पट्टा पूरा था। हाँ ये 1800 वाला है। तो कहाँ गए थे हम? ऊपर तीन किए ना उन्होंने देश के भेद से तीन प्रकार। तो उन्होंने ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक कहा। जिस प्रकार से द्रव्य अवस्थित है, अब ये सूत्र में जो जो शब्द आए हैं, पहला शब्द आया था क्षेत्र, क्षेत्रानुगम, क्षेत्र शब्द का अर्थ बता दिया उन्होंने। अब अनुगम किसको कहना? जिस प्रकार से द्रव्य अवस्थित है उस प्रकार से उसको जानना अनुगम कहलाता। कल इंदुबेन आपको बताया ना, अकॉर्डिंगली, किसके अकॉर्डिंगली? जैसे जिनेंद्र भगवान ने कहा है उसके अकॉर्डिंगली, हमारे अपने बुद्धि से नहीं। ये भूगोल में भी अपनी बुद्धि या अपने वर्तमान के चार नजर के सामने मत लाना, क्योंकि अपनी बुद्धि से ये माप नहीं हो रहे हैं, अनुगम की बात चल रही है। जैसे जिनेंद्र भगवान ने जानकर बताया है उसकी बात चल रही है, क्योंकि हम जो पहले पढ़ते हैं वही हमको वही सर्वे सर्वा लगता है, ख्याल है ना? दूसरी बात कैसे हो सकती है तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ जो बता रहे हैं उसी को हमको जानना है। डोंट ट्राई टू कंपेयर विथ अपने को जो अभी मालूम है उससे, ये तो हम तो अल्पज्ञानी है ना, अल्पज्ञान से पूरे केवल ज्ञान का माप नहीं निकल सकता। तो जिस प्रकार से द्रव्य अवस्थित है उस प्रकार से उसको जानना अनुगम कहलाता है। क्षेत्र के अनुगम को क्षेत्रानुगम कहते हैं। हम कहते हैं गम्य शब्द है ना, गम्य, गम्य नहीं है ने, ख्याल में नहीं आता, गम्य नहीं है, और गम्य हो गया, बुद्धि गम्य है ने, बुद्धि में आने योग्य है, जानने योग्य है, ये गम अनुगम है ने, जैसा कहा है वैसा जानना, उसको अनुगम कहते। ये क्षेत्रानुगम हुआ। उससे अर्थात क्षेत्रानुगम से शरीर के निर्देश के समान दो प्रकार का निर्देश किया गया है। शरीर का निर्देश कैसा कहते हैं, ब्रैकेट में बताया, शरीर सामान्य और मुखादि अंगोपांग उसके विशेष। जैसे शरीर को बताना है तो शरीर इन जनरल सामान्य की बात करेंगे, या उसके एक एक, जैसे मुख कैसा है, आंखें कैसे, कान कैसे, नाक कैसे, अलग अलग पर बताएंगे तो उसके विशेष हो जाएंगे। वैसे यहाँ निर्देश भी दो प्रकार का है, एक सामान्य का निर्देश और एक विशेष का निर्देश, यानी उसको हम ओघ और आदेश कहा। अभी यहाँ गुणस्थान और वो नहीं भी लगेंगे, परंतु एक सामान्य का निर्देश होगा और एक विशेष का निर्देश होगा। निर्देश, प्रतिपादन और कथन ये सब एकार्थक है। ओघ से अर्थात द्रव्यार्थिक न के अवलंबन से और आदेश से अर्थात पर्यायार्थिक न के अवलंबन से निर्देश दो प्रकार का है। यहाँ तो सामान्य क्षेत्र का सामान्य वर्णन वो ओग होगा, और उसकी विशेषताएं बताना ये आदेश होगा, विशेष शंका। दोनों नयों की अपेक्षा से निर्देश किस लिए किया जाता है, दोनों की बताने की क्या आवश्यकता है, सामान्य और विशेष दोनों का कथन क्यों करते हैं, उसका समाधान नहीं, क्योंकि द्रव्यार्थिक नय में अवस्थित शिष्यों के अनुग्रह के लिए ओघ निर्देश किया जाता है, तथा पर्यायार्थिक नय में अवस्थित शिष्यों के अनुग्रह के लिए आदेश निर्देश किया जाता है। तो ये द्रव्यार्थिक नय वाला सम्यक दृष्टि होगा कि पर्यायार्थिक नय वाला होगा? एक भी नई वाला नहीं है, आप पहले बार कहते दोनों नई वाला नहीं है। हाँ देखो, ज्ञानी के ही नए होते हैं, तो अवलंबन किसी भी नए का हो सकता है। कभी द्रव्यार्थिक नए से बातें करेगा, कभी पर्यायार्थिक नए से करेगा, ख्याल है ना? ये अनुभव की बात नहीं हो रही है, कौन से नए से अवलंबन अनुभव होगा उसकी बात नहीं हो रही। नए तो ज्ञानी के है, अब वो क्षेत्र संबंधी जानकारी ले रहा है, तो हो सकता है सामान्य से जानता हो या किसी को विशेष जानने की रुचि हो, तो दोनों ही नयों से यहाँ कथन है, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। हाँ, इन दोनों निर्देशों के अतिरिक्त और कोई तीसरा निर्देश है नहीं, या तो सामान्य में बात होगी द्रव्यार्थिक नय से, या उसके भेद प्रभेद विशेषताएं होगी, क्योंकि दोनों प्रकार के नयों में अवस्थित जीवों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के श्रोताओं का अभाव है। अतएव दो प्रकार से ही निर्देश किया जाता है, एक सामान्य से और एक विशेष से। जिस प्रकार से उद्देश किया जाता है उसी प्रकार से निर्देश होता है। इस न्याय के अनुसार ओघ निर्देश के लिए उत्तर सूत्र कहते हैं, यानी ओघ निर्देश होगा। अभी हम ओघ की अपेक्षा से कह रहे हैं, द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से या पर्यायार्थिक, वैसा निर्देश भी अलग अलग होगा। तो अभी अगला सूत्र बता रहे हैं, ओघेन, यानी अभी सामान्य से बात करें, ओघेन मिच्छाइट्टी केवड़ी खेतते सवलोगे। ओघ निर्देश की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, या जीव ठान में हमको क्षेत्र बता रहे हैं ना, जीव कहाँ रहते हैं, कितने क्षेत्र में रहते हैं, कहाँ कहाँ विहार करके लौटेंगे, वो सब उसमें आएगा। तो मिथ्यादृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, सर्वलोक में रहते हैं। इस सूत्र का अर्थ कहते हैं वह इस प्रकार है, सूत्र में ओघ इस पद का निर्देश आदेश प्ररूपणा के निराकरण के लिए आया है। यहाँ पहले ओग की बात हो रही है, आदेश की नहीं, इसलिए ओग शब्द डाला। सूत्र की जब चर्चा करते हैं तो एक एक शब्द क्यों डाला है उसके पहले हमने देखा था, इस तरह उनकी चर्चा करते आए हैं। फिर कौन सा और निर्देश की अपेक्षा, मिथ्यादृष्टि। मिथ्यादृष्टि इस पद का निर्देश शेष गुणस्थानों के प्रतिषेध के लिए आया है। अन्य गुणस्थानवर्ती जीवों की यहाँ बात नहीं हो रही है, अकेले मिथ्यादृष्टि गुणस्थान की बात हो रही है। तो मिथ्यादृष्टि जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, पूरे लोक में रहते हैं। कितने क्षेत्र में आप कहते दूसरे गुणस्थानवर्ती कहाँ रहते हैं, कौन सी कर्मभूमि में, देवों की कि नारकियों की, देव में भी है नरक में भी है, हाँ चारों गति में। तो किस में है, पूरे लोकाकाश में होगा कि नहीं होगा, होगा पूरे लोकाकाश में होगा, संगी पंचेंद्रियों में होगा ना, वो तो त्रसनाली में होगे, ख्याल है, विग्रह गति के हिसाब से वो त्रसनाली के बाहर कौन जाएंगे, वो एक इंद्रियादि, मगर वो तब तक उसका साधन नहीं रहेगा। त्रसनाली के बाहर जो त्रस पाए जाते हैं विग्रह गति में या मारणांतिक समुद्घात में, वो कौन से वाले बाहर कौन जाएंगे, एक इंद्रिय जाएंगे, तो वो तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान वाले रहेंगे, उनमें साधन गुणस्थान नहीं पाया जाएगा, ख्याल है, वो आएगी बात अभी क्रम से। अभी तो मिथ्या दृष्टि कहाँ रहते उसका हमको पता लगाना है ना, पूरे लोग क्षेत्र, उनका क्षेत्र रहने का ठिकाना कहाँ कहाँ पाए जाते, कहाँ पाए जाते हैं उसकी बात चल रही है। कितने क्षेत्र में रहते हैं, इस पृष्ठा का फल सूत्र की प्रमाणता प्रतिपादन करना है। पहले भी हमने संख्या प्ररूपणा में केवड़िया ऐसा पूछते थे, कितनी है संख्या, पूछने का क्या कारण था, जैसे जिनेंद्र भगवान के सामने प्रश्न उठा कितने हो, तो जिनेंद्र भगवान ने उसका उत्तर दिया है, उसके द्वारा सूत्र की प्रमाणता बताई है कि ये सूत्र जो है जिनेंद्र भगवान ने जो उपदेश दिया है वही यहाँ पर लिखा है, ये बताने के लिए प्रश्नात्मक पहले बताया फिर उसका उत्तर दिया। इसकी चर्चा तो हमने पहले भाग में दूसरे भाग में बहुत की थी। सर्वलोक में इस पद से क्षेत्र के प्रमाण का निर्देश किया जाता है। क्षेत्र का प्रमाण बताया कि मिथ्यादृष्टि जीव कहाँ रहते हैं, तो सर्वलोक में, यानी लोक से बाहर नहीं रहते, ये भी सिद्ध हो गया उसमें, तो लोक ये उसका क्षेत्र हो गया। यहाँ सूत्र में लोक ऐसा सामान्य पद कहने पर सात राज्यों का घनात्मक लोक ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्षेत्र प्रमाण अधिकार में, ये पांच नंबर की गाथा ऊपर हम पढ़ेंगे, पल्लो सायर सुई पदरोय गणंगुलोय जगसेढ़ी लोय पदरोय लोगो अठ दुमाणा मुणे यो। ये आठ मान बताए हैं, मान यानी मेजरमेंट्स, इसको उपमा मान कहते हैं। मान के दो भेद होते हैं, एक संख्या मान और एक उपमा मान। वैसे तो मान के बहुत सारे भेद होते हैं, द्रव्यमान, क्षेत्रमान, कालमान, भावमान, और ये सभी लोकोत्तर मान हैं। लौकिक मान में तो हम देखते हैं, जैसे उसमें तो तौलने का है तो वो वजन किलो में मापेंगे, मीटर, लीटर, ये अलग अलग मान है उसमें, बराबर। परंतु ये जो लोकोत्तर मान है उसमें द्रव्यमान, क्षेत्रमान, कालमान, भावमान वगैरह होते हैं। उसमें भी यहाँ जो एक क्षेत्र संबंधी जो मान है, तो कौन कौन से ये, पल्य, सागर, सुचंगुल, प्रतरांगुल, घनांगुल, जगत श्रेणी, लोक प्रतर और लोक। अभी पल्य सागर ये कालमान में आता है, परंतु ये सब मान ही है, ख्याल है ना। तो ये आठ मान जानना चाहिए, इसको उपमा मान, उपमा देकर ये मेजरमेंट समझाया है। पल्य यानी खड्डा, गर्त, तो हमने देखा था इतना खड्डा करो, वो रोम खंडों से भर दो, सौ साल के बाद एक एक निकालो, तो उसने साल बीत जाने पर एक पल्य होगा, फिर ऐसे दस कोड़ा कोड़ी पल्यों का एक सागर होगा, आदि आदि जो है ये सब माप है, उपमा देकर समझाया है। सुचंगुल एक सिंगल लाइन में जो है उसको सुचंगुल कहते हैं, प्रतरांगुल सुचंगुल गुणा सुचंगुल प्रतरांगुल कहते हैं, और प्रतरांगुल गुणा फिर सुचंगुल वो घनांगुल होता है। जगत श्रेणी सिंगल लाइन में सात राजू है उसको जगत श्रेणी कहते हैं। हाँ, उसमें जितनी प्रदेशों की संख्या, मेजरमेंट तो मान लेते हैं अब दो सेंटीमीटर या चार सेंटीमीटर जो कुछ है, तो उसमें प्रदेश कितने हैं उस संख्या को सुचंगुल कहते हैं। ये कितनी है उंगली आपकी, हमेशा ने उसका मेजरमेंट बताया ना शास्त्र में, अंगुल कितने, अंगुल में भी हमने उच्छेदांगुल, आत्मांगुल और प्रमाणांगुल देखे थे। तो यहाँ जो क्षेत्र में, तो प्रमाणांगुल से बात करेंगे, जो उच्छेदांगुल से 500 गुना है। उच्छेदांगुल कितना है, तो 8 यव के बराबर है। जितने हम मान लेते हैं यव के बदले हम गेहूं मान लेते हैं, तो 8 गेहूं एक के ऊपर एक रखो तो कितना होगा, तो उतना एक अंगुल हो गया। उसमें प्रदेश कितने हैं, तो उसका नाम है सुचंगुल। ये पल्ले में जितने समय है उससे असंख्यात असंख्यात गुणा कर दो, तो ये अंगुल में प्रदेश आएंगे। हाँ, क्योंकि जितने द्रव जो जितने वर्ग स्थान पर पल्य है उतने ही वर्ग स्थान जाना, परंतु पल्य को हम वर्ग करने बैठे तो दो से शुरू किया था, दो के वर्ग से। अब यहाँ स्टार्टिंग ही पल्य का वर्ग चालू करना, पल्य का वर्ग, वर्ग का वर्ग, वर्ग का वर्ग, तो जितने स्थान जाने पर पल्य आया था उतने ही स्थान आगे चले जाओ तो अंगुल आता है। तो अंगुल में प्रदेशों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो अंगुल, अंगुल गुणा अंगुल प्रतरांगुल, और एक गुणा करो सुचंगुल से तो घनांगुल। जगत श्रेणी यानी सात राजू, सात राजू गुणा सात राजू, जिसको जगत प्रतर कहते हैं या लोक प्रतर कहते हैं, 49 स्क्वायर राजू, और उसको और एक सात राजू से मल्टीप्लाई करो तो वो लोक हो जाएगा, 343 घन राजू। तो ये क्षेत्र में तो ऐसे ही हिसाब चलेगा सब। इस गाथा में जो लोक का ग्रहण किया गया है उससे जाना जाता है कि यहाँ पर सात राजू के घन प्रमाण लोक का ग्रहण अभीष्ट है। उसका विशेषार्थ, एक प्रदेश वाली सात राजू लंबी आकाश प्रदेश पंक्ति को जगत श्रेणी कहते हैं। उसके थिकनेस एक प्रदेश वाली सिंगल लाइन, तथा जगत श्रेणी के वर्ग को जगत प्रतर, जैसे ये पेपर है सामने से देखो खाली सिंगल लाइन है, और अभी ऐसा देखो आप लंबी और रुंदी है ना, तो पूरा ये जगत प्रतर, ऐसा प्रतर प्रतर क्षेत्र कहते हैं उसको, ऐसा रखो तो ऐसा हॉरिजॉन्टल कैसे भी रखो, ये प्रतर क्षेत्र हुआ, जगत श्रेणी गुणा जगत श्रेणी, जगत प्रतर। अभी इसको क्यूब करो, तथा जगत श्रेणी के वर्ग को जगत प्रतर और घन को घनलोक कहते हैं। गाथा में इसी क्रम से जगत श्रेणी, जगत प्रतर और लोक पद का ग्रहण हुआ है। इससे ज्ञात होता है यहाँ पर लोक से घनलोक का अभिप्राय है। शंका, यदि यहाँ पर इसी घनलोक का ग्रहण किया जाता है तो पांच द्रव्यों के आधारभूत आकाश का ग्रहण नहीं प्राप्त होता है। ये पांच द्रव्यों का आधारभूत ऐसा जो लोक कहा था लोकाकाश, तो शंकाकार का कहना है आप अगर सात राजू के घन स्वरूप लोक कहते हो तो वो जो पांच द्रव्यों का आधारभूत आकाश कहा था उसका अर्थ इसमें से नहीं निकलता है। ये शंकाकार की शंका है, क्योंकि उस लोक में सात राजू के घन प्रमाण वाले क्षेत्र का अभाव है। और यदि सद्भाव माना जावे तो अभी शास्त्र की कुछ गाथाएं उद्धृत करता है, और क्योंकि वो शंकाकार है ना, तो शंकाकार है ने उसमें कहीं ना कहीं कुछ गफलत हो रही है, तभी तो उसके ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं। क्योंकि शास्त्र में जो ऐसा लोकाकाश का आकार आता है, नीचे सात राजू, बीच में एक राजू, ब्रह्म स्वर्ग के पास पांच राजू और फिर ऊपर एक राजू, तो इसका जो फ्रंट व्यू है उसकी अपेक्षा से उसको कहा ये नीचे ऐसा वेत्रासन, क्या कहा, वेत्रासन जैसा है, वेत का मूढ़ा होता है ना वैसा दिखता है, और ऊपर उल्टा मृदुंग रखा ऐसा दिखता है, या मृदुंग रखा ऐसा दिखता है। तो इस कारण उसका कुछ कंफ्यूजन चल रहा है। हमें तो मालूम है, हमने बहुत बार पढ़ा है कि ये दक्षिणोत्तर सर्वत्र सात राज्यों है, यानी ये ऐसे क्यूबिकल है, परंतु अभी शंकाकार के पूछने का ऐसा तरीका है कि उसने इसको सिलिंड्रिकल मान लिया। कैसा, मृदुंग का ये ऐसा गोल मान लिया, यहाँ भी गोल और यहाँ भी ऐसा गोल माना, तो ये कहता है ये ऐसा ऐसा है राउंड, नीचे वो मुंडे के जैसा है और ऊपर वो मृदुंग रखा ऐसा, ये उसकी मान्यता हो रही है। उसने ऐसा जो दक्षिणोत्तर जो फैला हुआ है सर्वत्र सात राज्य, वो ऐसा नहीं मानते हुए ऐसा गोल मान लिया है, और इसीलिए वो शास्त्र का ही आधार दे देकर कहता है कि सात राज्यों का स्क्वायर और उसका घन ऐसा 343 वाला नहीं बन सकता, ऐसा उसका कहना है। उसके लिए वो गाथा भी यहाँ बताता है, यानी छो एक एक गाथा पढ़ेंगे उसका अर्थ करेंगे। हेठा मज्जे वरिम वेत्तासन झल्लरी मुइंगणि हो मज्जिम विथारेणय चौदस गुणमायदो लोगो। नीचे उसका अर्थ है नीचे वेत्रासन यानी वेद के मुंडा के समान, मध्य में झल्लरी के समान और ऊपर मृदंग के समान आकार वाला, तथा मध्य विस्तार से अर्थात एक राजू से 14 गुना आयत लोक है। वो तो ऐसा ही राउंड समझकर ये सब डिस्क्रिप्शन कर रहा है। ये जो डिस्क्रिप्शन है वो जो अभी तक हमने ऐसा देखा ना सात राजू वाला, उसमें भी वही डिस्क्रिप्शन होगा कि नीचे ऐसा ही वेत्रासन जैसा है, बीच में झल्लरी ने थाली जैसा गोल है बीच में, और ऊपर है वो मृदुंग के आकार का, यानी इस तरह से आकार है, पूरा ऊपर रख दो ऐसा आकार है। और ये ऐसा 14 है, एक राजू से 14 गुना, यानी ये 14 राजू है, बराबर। अब आगे और एक वो गाथा बताता है, लोगो अकट्टिमो खलु अनायनिहणो सहावण्युवत्तो जीवा जीवे हिफुडो निच्चो तलरुख संठानो। यह लोक निश्चयतः अकृत्रिम है, किसी ने बनाया नहीं है, ईश्वर ने इसकी निर्मित किया हो, उसकी रक्षा की हो, कोई शेप दिया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अकृत्रिम है, अनादि निधन है, इसका कभी नाश नहीं होने वाला है, अनादि से ही है, अनंत काल तक ऐसा ही रहने वाला है। स्वभाव से निर्मित है, यानी स्वभाव से है, अभी कहने के लिए निर्मित है कहेंगे, पर निर्माण जब कहते तो कहीं ना कहीं उसके स्टार्टिंग पॉइंट हमें ऐसा लगता है, ऐसा नहीं है, जिसको स्वयं सिद्ध है ऐसा कहते हैं। जैसे द्रव्यों को भी हम कहें ना, प्रत्येक द्रव्य कैसा है, अकृत्रिम है, अनादि अनंत है, स्वयं सिद्ध है, किसी ने बनाया नहीं है, वैसे लोक की भी बात हो रही है। जीव और अजीव द्रव्यों से व्याप्त है, नित्य है, तथा ताल वृक्ष के आकार वाला है। ये ताल यानी पाम होते हैं ना, जैसे नीचे से ऐसे होता है और ऊपर उसके शाखाएं ऐसे दिखती है, तो उसके आकार जैसा है। अब अगली गाथा, लोयस्य यविखंभो चौपरायो यहो इणायो सत्ते कगोय पंचे कगोय रज्जु मुणे यौवा। लोक का विषकंभ है, विस्तार चार प्रकार का है ऐसा जानना चाहिए, जिसमें से अधोलोक के अंत में सात राजू, यहाँ नीचे सात राजू, मध्यलोक के पास एक राजू, ब्रह्मलोक के पास पांच राजू और ऊर्ध्वलोक के अंत में एक राजू विस्तार जानना चाहिए। है तो ऐसा ही, परंतु फिर भी उसका कन्फ्यूजन कहाँ है, उसने मृदुंगाकार ही मान लिया है, यानी सिलिंड्रिकल जैसे मान लिया उसने। ये पूर्व में कही गई सूत्र गाथा है, अप्रमाणता को प्राप्त होती है। यदि आप ऐसा नहीं मानोगे तो ये अप्रमाणता हो जाएगी। यहाँ तो ये प्रमाण बतलाया है और इसमें से सात राजू का घन होता नहीं है, ये शंकाकार की शंका है। समाधान, अब यहाँ उक्त शंका का परिहार करते हैं। इस प्रकृत सूत्र में लोक ऐसा पद कहने पर पांच द्रव्यों के आधारभूत आकाश का ही ग्रहण किया है, अन्य का नहीं। शंकाकार तो उसी को पूछना चाहता है, परंतु उसका कन्फ्यूजन वो सिलिंड्रिकल वाले आकार में वो गड़बड़ा गया है, ख्याल है ना, जिसको फ्रंट व्यू की अपेक्षा से बताया था उसने पूरा ही ऐसा ही गोलाकार ही मान लिया है। क्योंकि लोक पूर्ण समुद्घातगत केवली कितने क्षेत्र में रहते हैं, सर्वलोक में रहते हैं, इससे उक्त बात सिद्ध होती है, यानी पूरे लोक की ही यह बात है। यहाँ जो मिथ्या दृष्टि जीवों का क्षेत्र है, पूरे लोक की ही बात चल रही है। यदि लोक सात राजू के घन प्रमाण नहीं है तो लोक पूर्ण समुद्घातगत केवली लोक के संख्यात्वे भाग में रहते हैं, इस प्रकार कहना चाहिए था। केवली भगवान केवली समुद्घात में पूरे लोक में रहते, ऐसा उसका पूरे लोक को व्याप्त है। यदि ऐसा नहीं होता, सात राजू का घन वाला लोक नहीं होता, तो उसके संख्यात्वे भाग में रहते ऐसा कहते थे, परंतु ऐसा तो नहीं कहा। और मृदंगाकार लोक के प्रमाण को देखकर अर्थात उसकी अपेक्षा से लोक पूर्ण समुद्घातगत केवली का घनलोक के संख्यात्वे भाग में रहना असिद्ध भी नहीं है। क्या कहते हैं, यदि हम वो मृदंगाकार की कल्पना करेंगे तो ये तो पूरा लोक ऐसा है, इसका क्षेत्रफल कितना रहता है, 343 घन राजू, कैसा निकला इसको निकाल कर देखेंगे हम तीन जो बाजू है उसकी मल्टीप्लिकेशन करते ना, लंबाई या हाइट है, उसकी विड्थ है और जो डेप्थ है, चौरस क्यूबिकल है, तो तीनों बाजू का हम गुणा करेंगे तो हमको लोक का घनफल आएगा, घनफल निकालेगा, क्षेत्रफल नहीं, घन क्षेत्रफल जिसको कहते हैं। तो हाइट तो सर्वत्र 14 राजू है, तो 14 ले लेंगे हम, ये यहाँ नीचे ही लिख के 14 मल्टीप्लाइड बाय, ये सर्वत्र 7 है तो 7 मल्टीप्लाइड बाय, अभी ये तो वेरिएबल है, कहीं 7 है तो कहीं 1 है तो कहीं 5 है तो कहीं 1 है, तो एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज कितने जगह का, ये हमको मालूम है 4 जगह का, तो 4 की टोटल करेंगे और 4 से भाग देंगे, 7 प्लस 1 8 प्लस 5 13 और 1 14, 14 डिवाइडेड बाय 4, 14 डिवाइडेड बाय 4, यानी अपना भी इक्वेशन कैसा हुआ, 14 गुना 7 गुना 14 चतुर्थांश, ये 14 चतुर्थांश के बदले हम यहाँ 14 द्वितीयांश, ये 14 द्वितीयांश करेंगे, समझने के लिए। नीचे 4 था ना, देखो ये 4 से हमने भाग दिया, 2 का भाग यहाँ दिया और 2 का भाग यहाँ दिया, तो यहाँ भी 7 7 7 इक्वलाइज किया हमने, सभी ओर से लोकाकाश को दबा दो तो वो पूरा 7 वाला क्यूब आ जाएगा, 7 राज्यों का। अब कहते हैं यदि हम मृदंगाकार का एक क्षेत्रफल यानी घनफल निकालेंगे तो वो 343 का संख्यात्मक भाग जितना ही निकलता है, ये जो यहाँ ऐसा इसका क्षेत्रफल अभी वो घनफल निकाल के दिखलाएंगे। ऐसा अगर हम सिलिंड्रिकल मानते हैं और वो इस तरह से नहीं मानते, 7 राज्यों दक्षिणोत्तर वाला, तो इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा वो बहुत कम रहेगा, वो 343 नहीं निकलेगा, कम निकलेगा। इसलिए शंकाकार का जो ये सिलिंड्रिकल मानना है, मृदंगाकार मानना है, वो गलत है, ये सिद्ध करेंगे। क्योंकि इसका अगर हम घनफल निकालेंगे तो वो बहुत कम, यानी लोकाकाश का जो 343 घन राज्य है उसके संख्यात्मक भाग ही इसका घनफल निकलेगा, तभी इसका घनफल निकाल के दिखाएंगे हमको, ख्याल है। अब देखेंगे इसका, क्योंकि देखो हम आए हैं अभी 3 3 6 लाइन, 7वीं लाइन में है ना ये, क्योंकि गणना करने पर यानी उसका घनफल निकालने पर मृदुंगाकार लोक का प्रमाण घन लोक के संख्यात्मक भाग पाया जाता है। यदि उसको ऐसा गोलाकार मृदुंगाकार मानेंगे हम और इसका घनफल निकालेंगे तो वो 343 के संख्यात्मक भाग इतना ही आएगा। तो इसका अभी घनफल कैसे निकालना, वहाँ तो आसान था अब इसको निकाल के दिखा ला रहे, वह इस प्रकार है, 14 राजू प्रमाण आयत, ये बता रहे कैसा, उसने शंकाकार ने जैसा इमेजिन किया है उसको पहले बता रहे। तो 14 राजू प्रमाण आयत यानी ऊंचा लंबाई वाला, 1 राजू प्रमाण विस्तृत और गोल आकार वाली ऐसी मृदुंगाकार लोक की सूची को लोक के मध्य से निकाल करके पृथक स्थापित करना चाहिए। अभी इसका हमको घनफल निकालना है तो ये जो बीच वाली जो है इसका क्षेत्रफल, इसका घनफल निकालना आसान है, सिलेंडर है ना बीच में, 1 राजू व्यास है और 14 राजू हाइट है उसकी और गोल है, यानी इस तरह से इसको खंभे जैसा हम इसको अलग निकालेंगे, यानी उसका घनफल अलग निकालें, पीस पीस वाइज हम इसका करके टोटल करेंगे इसको, तो उसको पृथक स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार से स्थापित करके अब उसके फल अर्थात घनफल को निकालने का विधान करते हैं। कोई भी सिलिंड्रिकल अभी चीज है ऐसी खंबे जैसी, तो उसका कैसा घनफल निकालेंगे, ये जो राउंड है ना 1 राजू व्यास वाला जो राउंड सर्कल, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 14 राजू करेंगे, सर्वत्र समान है ना, तो पहले में पहले क्या करेंगे, वो परिघि निकालेंगे, वो सूत्र बताएंगे। देखो वह इस प्रकार है उस घनफल का, ये जो अभी हमने देखा 1 राजू विस्तार वाला और 14 राजू लंबा, मुख में तिर्यक रूप से गोल और आकाश के 1 प्रदेश प्रमाण बाहुल्य वाली इस पूर्वोक्त सूची की परिघि, ये परिघि निकालना है, ये ऐसा जो राउंड है सरकमफेरेंस जिसको हम कहते हैं, परिघ मराठी में, परिघ निकालना है, तो कैसे निकालता है? हमको क्या मालूम है? खाली व्यास यानी डायमीटर मालूम है, डायमीटर मालूम है, और हमको परिघ निकालना है। क्या क्या सूत्र है? 22 सप्तमांश किसको गुणा करना? व्यास त्रिज्या को ना, त्रिज्या को ना, पाई आर, पाई पाई पाई, हाँ पाई आर स्क्वायर। हाँ अब देखो यहाँ क्या लिखते हैं। परिघी इतनी नहीं, देखो आगे गाथा नंबर 14 पृष्ठ 42 पर 14 नंबर की गाथा है, वहां नीचे उदाहरण दिया है, देखो 42 पेज पर। एक राजू व्यास के वृत्त क्षेत्र की परिघी का प्रमाण इस प्रकार से हुआ। वृत्त ने वो गोलाकार, गोलाकार क्षेत्र है, उसका परिघी निकालने का तरीका क्या है? तो उन्होंने ये तो सूक्ष्म परिघी निकालने का ये तरीका बताया है। देखो इसमें ऊपर जो विशेषार्थ है ना उसको पहले पढ़ेंगे। यहाँ पर मंडलाकार, मंडलाकार है गोलाकार क्षेत्र की परिघी का प्रमाण लाने की प्रक्रिया बतला गई है। इसमें भी स्थूल रूप से अलग, जैसे हम 22 सप्तमांशों करते ना पाए से, वैसा भी इसमें बताएंगे। देखो स्थूल मान से तो परिधि का विस्तार व्यास से तिगुना ले लिया जाता है, स्थूल एकदम स्थूल कथन। यथा जैसा वासो तिगुनो परिहि, ये तो बिल्कुल हम कहते ना स्थूल कथन है तिगुणा। जैसे 22 सप्तमांश है ने 3.1 सप्तमांश, तो हमने तिगुणा कह दिया, ये तो स्थूल कथन हुआ। इससे भी सूक्ष्म प्रमाण 10 का वर्गमूल बतला गया है, √10, तो 9 का √3 होता है। हाँ और फिर आगे वो पूर्णांक में अपूर्णांक में जो कुछ आएगा। यथा विखंब वग दह गुण करणी वट्टस्य परिरो होदी, किंतु प्रस्तुत गाथा में इस सूक्ष्म प्रमाण से भी सूक्ष्मतर प्रमाण निकालने की प्रक्रिया बतलाई है। इससे भी सूक्ष्म प्रमाण बतलाया, वो कैसा है वो ऊपर देखो 14 नंबर की गाथा का अर्थ करते हैं। व्यास को 16 से गुणा करे, अभी हमारा एक राजू व्यास है, पहले उसको 16 से गुणा करेंगे, पुनः 16 जोड़े, उसी में 16 जोड़ देंगे, पुनः 3, 1 और 1 अर्थात 113 का भाग देवे, यानी 16 + 16 = 32 हुए, 113 का भाग दिया, और व्यास का तिगुना जोड़ देवे। हमारा ये उनका सूत्र है, 16 से गुणा करो और 16 उसमें ऐड कर दो, तिगुना जोड़ देवे, यानी 3 point something हम कहते ना, वो उसी की बात यहाँ चल रही। देखो एक राजू को 16 से गुणा किया, 16 हुआ, उसमें 16 मिलाए 32 हो गए, डिवाइडेड बाय 113, और उसमें वो 1 × 3 3 जोड़ दिए, 3.32 / 113, ये सूक्ष्मतर प्रमाण निकालने की प्रक्रिया बतलाई है उन्होंने। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परिधि का प्रमाण होता है, तो ये उन्होंने यहाँ बता दिया 3.32 / 113। अब यहाँ आए हैं तो नीचे का भी देख लो, 7 राजू का जो परिघ होगा, ये अभी की बात नहीं है, बाद में इसका हमको लगेगा। यहाँ जो नीचे है ना, ये राउंड वाला, ये वाला राउंड, हाँ 7 गुना डायरेक्ट नहीं होगा, 7 राजू व्यास होगा, इसको 16 गुना करो प्लस 16 मिलाओ, देखो नीचे 16 × 7 = 12, 10 और 16 उसमें मिलाए, डिवाइडेड बाय 113 प्लस 7 × 3, उसका टोटल 22.15 / 113 आता है। उसका काम तो बाद में लगेगा, अभी तो हम ये जो प्रकरण चल रहा है उसकी बात देखेंगे। 3 × 7, हाँ 7 गुना हो जाएगा उसका, बराबर है। व्यास बढ़ गया ना उतना, अब यहाँ तक आ गए ना, तो ये उन्होंने परिघ निकाली 371/113, ये कैसे निकाली उसका उन्होंने बता दिया यहाँ। इस परिधि के प्रमाण को आधा करके पुनः उसे एक राजू विष्कम्भ के आधे से गुणा करने पर, हाँ ये 12 पेज पर आना फिर। अभी ये जो हम एक राजू चौड़ी 14 राजू लंबी ऐसे गोलाकार जो है उसका घनफल निकाल रहे हैं, तो पहले उन्होंने परिघी निकाली, एक राजू व्यास डायमीटर है तो उसका सरकमफरेंस कितना है वो निकाला, बराबर सरकमफरेंस कितना निकाला अभी यहाँ देखो हमने देखा है इसमें 371/113 ये सरकमफरेंस है, परिघी है। इस परिधि के प्रमाण को आधा करके और उसे एक राजू विष्कम्भ के आधे से गुणा करने पर उसके क्षेत्रफल का प्रमाण 371/452 इतना होता है। हम क्या हाफ त्रिज्या इंटू करते ना, यही बात है, हाँ हाफ त्रिज्या करते हैं। अभी व्यास के आधा और परिघि का भी आधा कर दिया, या व्यास का एक चतुर्थांश कर दो ना, एक ही बात है। त्रिज्या का आधा यानी क्या हुआ, व्यास का आधे का आधा, तो क्षेत्रफल आ गया, ये इतने का ही आया, इतना ही एक प्रतर वाला है खाली। अब ये मल्टीप्लाइड बाय 14 राजू करेंगे हम इसका, इतना होता है इसका क्षेत्रफल। अब हमें उसका क्षेत्रफल का प्रमाण इतना होता है, यहाँ 14 राजू से नहीं गुणा किया क्या, अच्छा वो अलग निकाल है, वो अलग निकाल के रखा है, अब हमें लोक के अधो भाग का घनफल लाना इष्ट है। लोक के अधो भाग का घनफल लाएंगे नीचे का, ये यहाँ से 7 राजू ऐसा, परंतु इसका आकार ऐसा है ना वेत्रासन जैसे है, तो उसमें क्या करते हैं देखो, इसलिए उस क्षेत्रफल को 7 राजुओं से गुणा करने पर 7 राजू प्रमाण लंबी और 1 राजू प्रमाण चौड़ी उक्त गोल सूची का घनफल, अच्छा उन्होंने 14 से नहीं मल्टीप्लाई किया, इस गोल का खाली 7 से गुणा किया, इतना आया। ये जो गोल का निकाला था ना उसको 7 राजू से गुणा किया तो नीचे का बीच वाला एक गोल आया, एक राजू चौड़ा वाला। अब चहु बाजू से वो बाजू का रह गया है उसका क्षेत्रफल, उसका घनफल निकालेंगे। ख्याल है क्या किया उन्होंने पहले, हाँ देखो हमें नीचे के अधोलोक का घनफल निकालना है। अभी अधोलोक ऐसा रहा, ऊपर तो ऐसा एक राजू, नीचे 7 राजू, ये जो है बीच में से सेंटर में ही लेना है इसको, ये बीच का एक राजू वाली नली सिलेंडर 7 राजू वाली, उसका क्षेत्रफल निकाला, उसका घनफल निकाला। अब जो रिमेनिंग बाजू का जो है पार्ट उसका निकाल के दिखाएंगे, तो इसको बीच में से हटा दिया, बराबर इसका निकाल के रखा, बाद में ऐड करेंगे। अब आगे अभी ये तो सब सिलिंड्रिकल राउंड ही मान रहा है, वो तो एक्चुअल में हम 1 राजू/1 राजू मानते हैं, चौकोर मानते हैं ये उसके इसके, अभी उसकी बात आगे फैलो ना, अभी इसको जानो पहले, अभी इसका घनफल कैसे निकाल रहे उसको जानो। ख्याल है उसका घनफल कितना है, तो 7 से हमने गुणा किया उसको, पहले एक राउंड का निकाला मल्टीप्लाइड बाय 7 राजू, इसका तो हो गया। अब जो रिमेनिंग जो है उसका घनफल निकालेंगे, फिर सूची रहित 14 राजू लंबे लोक रूप क्षेत्र के मध्य लोक के पास से 2 खंड करके उनमें से नीचे के अर्थात अधोलोक संबंधी खंड को ग्रहण कर उसे एक ओर से ऊपर से लगाकर नीचे तक काट कर पसारने पर सूर्प के आकार वाला क्षेत्र हो जाता है। क्या कहते हैं इसको, तो हमने अलग रखा, ऊपर का मृदुंग अलग निकाल लिया, नीचे का वेत्रासन का भी निकालना है, तो इसका तो निकाला गोलाकार को, अब इसको जो बाजू का जो रिमेनिंग है तो उसको हम एक बाजू से काटेंगे उसको और फैलाएंगे। देखो यहाँ से आपको ये एक राजू चौड़ी मध्य लोक में यहाँ चौड़ी, और वो नीचे तक वैसे ऊपर से नीचे तक फैली हुई है सेंटर में, तो उसका तो हमने निकाला क्षेत्रफल, फिर इसको काटा ऐसा और फैला दिया तो सूपा के आकार का हो गया। फिर वो तो ऐसा थिन नहीं है, वो तो इसको थिकनेस भी है, वो एक कागज था यहाँ जाने दो, ये जो ऐसा काटा हमने इसको थिकनेस भी होगा ऐसा, ये जो यहाँ से अभी हमने हम नीचे की ओर से देखते नीचे सात राजू ऐसा था, सात राजू का व्यास वाला, उसमें से सेंटर का एक राजू व्यास वाला निकाल लिया तो बाजू में कितना रहा, सेंटर से अगर साढ़े तीन इधर साढ़े तीन इधर, हाँ तो तीन तीन रहेगी ना, तीन इधर और तीन इधर, यानी ये पूरा ही ऐसा इमेजिन करते हैं। इधर हमने काट दिया इसको, यहाँ काट दिया और ऐसा फैलाया, तो तीन राजू वाली वीर्त सर्वत्र है, ये नीचे तो सर्वत्र तीन राजू वाली वीर्त है, यानी अभी वो सेंटर का हॉलो निकाल दिया और नीचे की ओर से देखेंगे तो बीच का एक राजू वाला हमने निकाला है और रिमेनिंग ऐसा सर्वत्र तीन राजू वाला रह गया है, तो ये तीन राजू वाला थिकनेस है अभी यहाँ, और ऊपर तो कुछ नहीं है, एक एक वो ऐसा ही इस तरह से हो जाएगा, वो इसके लिए बहुत कुछ इमेजिन करना पड़ रहा है। ऊपर तो थिननेस इतना ही एक प्रदेश वाला और नीचे से तीन राजू हो गए ऐसा, नीचे ऐसा फैला है ना, ये सेंटर की लाइन, देखो इसको मैं ऐसा समझाती हूँ, हमने वो सिलेंडर निकाला ना बीच में से, निकालने के बाद कितना रह गया है, तो सेंटर की तो लाइन ऐसी थी है ना, और नीचे इस तरह से रह गया है, ये तो हम खाली ऐसे कट करेंगे तो ऐसा दिख रहा है, परंतु वो पूरा ही भाग कैसा है, तो देखो मैं इसको फैला के दिखाता हूँ, एक ही साइड काटना है फिर भी वो ऐसा दिखाएगा, इसकी थिकनेस में अलग कलर से बताती, इतना थिक है ये, नीचे से तीन राजू थिक है, टेपरिंग है। हाँ ऊपर टेपरिंग है ना, क्योंकि ऊपर तो एक राजू का वो तो हमने निकाल लिया, बीच का हॉलो हमने निकाल लिया, उसकी वीर थी एक राजू थी, वो तो सेंटर में से निकाल दिया, तो रिमेनिंग कितना हो गया, तो यहाँ तीन तीन राजू थिकनेस वाली है और ऊपर वो पेपर थिन यानी एक प्रदेश वाली थिन रह गई, तो तो नीचे तीन राजू वाली और ऊपर एक प्रदेश वाली थीन, ये इस तरह से रहेगी ये। और ऐसा यहाँ विस्तार, हाँ सुपा जैसा, अब वो भी वहाँ वैसा ही समझ लेना, वो बाजू पीछे की साइड में, या यहीं से समझाना है तो इस तरह से समझाएंगे हम, थिकनेस बताने के लिए, ख्याल है? यानी ये ऐसा विड्थ अंदर पड़ा है इसका, अभी थोड़ा स्ट्रेच करो इमेजिनेशन। तो अब कहते हैं सुर पहने सुपा के आकार वाला क्षेत्र हो जाता है, इस तरह वो फैलेगा, इस तरह से फैलेगा, परंतु इसको थिकनेस होगा यहाँ से नीचे से जाड़ा और ऊपर से कम, ऊपर से बिल्कुल एक प्रदेश थिकनेस होगा उसका। ये जो फैला है उसको इस तरह से थिकनेस रहेगा, थिकनेस है नहीं, क्योंकि वो अंदर अंदर से ये थिकनेस बाहर आया है, ख्याल है ना? ये थ्री डायमेंशन इसको इमेजिन करना, ये तो एक डायमेंशन हो गया है, ये इसीलिए मैंने वो प्लास्टिसिन मंगाया। अब यहाँ तक तो ठीक है, उसके और आधे छेद करो, तिरछे छेद करो, उसके स्क्वायर बनाओ, कुछ कुछ है उसमें। हमें तो सिलिंड्रिकल का घनफल कैसे निकालना है इतना ही देखना है। कौन सा? वेत्रासन का डायरेक्ट निकाल सकते थे ना? हाँ हाँ, वो निकाला है, आगे पिक्चर है इसमें स्टार्टिंग में। उसमें भी कंफ्यूजन है। हाँ देखो, ये सुपा का आकार बताया ना यहाँ, पहले पृष्ठ पहले ही यहाँ स्टार्टिंग में ही है, तेरापन का रेफरेंस है वो। अभी आगे के फिगर्स ख्याल में आने में तकलीफ है, यहाँ पहले पेज पर थी, ठीक है। अब ये जो आया है इतना थिकनेस है नीचे इसका, ये सर्वत्र, ये अंदर के भाग में है। अब इसमें से इसका उनको घनफल निकालना है, तो इसके पार्ट कर करके इसका घनफल निकालेंगे, तो उसके लिए क्या कहते हैं, विशेषार्थ कहते हैं। देखो ये तो कल फिर दोबारा हो जाएगा, अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं है? देखो यहाँ पर शंकाकार मृदंगाकार लोक को दृष्टि में रखकर यह कथन कर रहा है, उसका भाव यह है कि कितने ही आचार्य अधोलोक का आकार चारों ओर से गोल ऐसे वेत्रासन के समान मानते हैं, जो नीचे गोल आकार वाला तथा सात राजू चौड़ा है और ऊपर क्रमशः घटता हुआ मध्य लोक में गोल आकार वाला तथा एक राजू चौड़ा है, जो अभी हमने पेपर में करके देखा ना, ये नीचे सात राजू वाला है और ऊपर ऐसा मानता है वो नीचे का अधोलोक का आकार। इसके ठीक मध्य में ऊपर से नीचे तक स्थित सात राजू लंबी एक राजू चौड़ी गोल आकार वाली त्रसनाली है, ये यहाँ से वो उसका क्या क्या कहना है वो मान रहा है, सेंटर में बीच में उसको यदि वेत्रासनाकार अधोलोक के बीच में से निकालकर बचे हुए अधोलोक को एक ओर से ऊपर से नीचे तक काट कर पसार दिया जाए तो उसका आकार ठीक सुपा के समान हो जाता है। वो बीच वाली नली को निकाला और फिर इसको काटा और इसको फैला दिया तो ये सुपा के आकार का हुआ। इतनी ये तो थिन पेपर हमने लिया है, ये थ्री डायमेंशनल, इसको थिकनेस भी होगा, नीचे थिकनेस है तीन तीन राजू और ऊपर एक प्रदेश और नीचे तीन राजू, इस तरह से फैलेगा वो। इस सुरपाकार क्षेत्र के मुख का विस्तार 371/113, क्योंकि हमने ये परिघ ही निकाली थी एक राजू वाली, तो अब ये परिघ फैल गई तो इसका विस्तार यहाँ कितना है 371/113। एक राजू व्यास था उसका परिघ का जो प्रमाण है वो तो रहेगा ही ना, वन प्रदेश थिननेस यहाँ रह गया है तो ये यहाँ का है। और तल का विस्तार, हाँ वो तो उसके सात गुना, ये जो नीचे का तल का विस्तार है नहीं, ये विस्तार यहाँ से यहाँ तक, ये 22 पूर्णांक 15/113 है राजू प्रमाण है। इसे मुख विस्तार से अर्थात मुख विस्तार के अंत से लगाकर दोनों ओर 7 राजू लंबा नीचे की ओर छेदने पर 2 त्रिकोण क्षेत्र, पहला और है उसको और करना नीचे की ओर। देखो मैं पढ़ती हूँ तीसरी लाइन इस पैराग्राफ की, 7 राजू लंबा नीचे की ओर, नीचे की ओर करना उसको, छेदने पर 2 त्रिकोण क्षेत्र, अब यहाँ और की बदले और करना, और एक आयत चतुरस्र क्षेत्र, इस प्रकार 3 क्षेत्र हो जाते हैं। अभी इसको हम इस तरह से ऊपर से नीचे तक एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, 7 राजू लंबी होगी ना, तो ये आयत तैयार हुआ और ये त्रिकोण हुए। परंतु ये आयत में भी ऐसा समझना, नीचे से 3 राजू यहाँ है और ऊपर ऐसा पेपर थिनिस, यानी इस तरह से उसको, इस तरह से वो फैला हुआ है। ये भी अभी वो आयत का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, यानी वो आयत कैसा है अभी, जो अभी हमने सूपा देखा ना ऊपर, अभी हमने जो एक राजू परिघ की जो परिघ निकाला है उसको लेना 371/113, उतना ही नीचे 7 राजू लंबा ऐसा करेंगे बराबर, और इसके नीचे की विड्थ ऐसी 3 राजू हो जाएगी। हाँ ये क्लिप जैसा रखा है और ये ऐसा हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है हमको, ख्याल आता है? ये हमने, हाँ ये पीछे की टेपरिंग साइड, क्योंकि इतना 3 डायमेंशनल है, अभी यहाँ हम 2 डायमेंशन, एक ही डायमेंशन 2 डायमेंशनल देखा हम सिंगल, अभी इसको इमेजिन करो जैसे ये क्लिप रखते हम, तो नीचे से चौड़ा है 3 राजू और ऊपर थिन हो गए, तो इसका हमको निकालना है क्षेत्रफल, घनफल पूरा। तो वो कैसा निकालेंगे, तो घनफल के लिए क्या करते हम, 3 बाजुओं का हम गुणा करेंगे, यहाँ तो 7 राजू है, ये है 371/113 और ये है 3 राजू, परंतु 3 राजू नीचे ऊपर तो एक प्रदेश है, तो एवरेज निकालेंगे, नीचे 3 है ऊपर नहीं के बराबर है, 3 राजू प्लस एक प्रदेश, मान लेते 3 राजू, उसका आधा करेंगे 1.5 राजू हो गए, है ना, एवरेज तो निकालना है हमको। नहीं, 2 जगह हमने निकाले, 2 जगह एवरेज निकालना है, एक एक जगह है 3 राजू, एक जगह एक प्रदेश, उसका आधा करो 1.5 राजू हो जाएगा बराबर। तो 371/113 गुणा 7 गुणा 3 द्वितीयांश, ये जो संख्या आएगी ये पूरे का घनफल आ जाएगा। साइड का बाकी है, साइड में ही दिमाग ज्यादा लगाना पड़ रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, अब साइड का कैसा टुकड़ा रहेगा, अभी हम खाली देखते हैं ऐसा, यहाँ जो रिमेनिंग जो टुकड़ा है वो भी ऐसे ही नीचे, और ये जो हम पूरा ही हमने जो 22 पूर्णांक कुछ निकले थे ना उसमें से इसको निकाल दो, और फिर उसको आधा यहाँ आधा यहाँ रह जाएगा, उसकी बात हम कल करेंगे, कल दोबारा देखेंगे इसको दो फिर।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नऊ सदा